नंबर दो, दायित्व निर्वाह, एक समुदाय के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। नंबर तीन, निर्भरता की भावना, एक समुदाय के लोगों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, वे एक दूसरे के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक नगरीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि, भौगोलिक दूरी में कमी, जनसंख्या में वृद्धि एवं विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ के बढ़ने एवं द्वितीयक संबंधों में वृद्धि के कारण सामुदायिक भावना में कमी आती जा रही है, विशेषतः नगरीय समुदाय में। समुदाय की विशेषताएं, लक्षण। उपयुक्त तीन आधारों के अलावा समुदाय की निम्नलिखित कुछ प्रमुख विशेषताएं या लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर एक, स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों के द्वारा नहीं किया जाता, इसका तो समय बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। नंबर दो, स्थायीपन। समुदाय एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। हम स्पष्टतः यह जानते हैं कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। इसका कारण समुदाय के साथ अस्थायित्व के तत्व का जुड़ा होना है। नंबर तीन, विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है। नंबर फोर, मूर्तता। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के एक समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्यों के समूह के रूप में इसे अनुभव किया जा सकता है या किया जाता है। नंबर फाइव, व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, या तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां एवं संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योग देती हैं। नंबर छः, सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्यौहार तथा संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में एक ही व्यक्ति की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। नंबर सेवन, सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण एक ही समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। नंबर एट, आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदाय, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में पाई जा सकती है, वर्तमान समय के बड़े समुदायों में नहीं। आज तो छोटे समुदायों जैसे ग्रामों तक को अन्य ग्रामीण या नगरीय समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर नाइन, अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। समुदाय का परिवर्तित रूप, चेंजिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। आधुनिक युग में औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास तथा प्राथमिक संबंधों के बजाय द्वितीयक संबंधों की बहुतायत के कारण समुदाय का रूप काफ़ी कुछ बदल गया है अब ऊपर वर्णित विशेषताएं समुदाय में नहीं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में समुदाय की विशेषताओं में निम्नलिखित परिवर्तन आए हैं। नंबर एक, अब समुदायों का आकार या भौगोलिक विस्तार काफ़ी बढ़ चुका है। सभ्यता के विकास के साथ साथ छोटे समुदाय अब बड़े समुदायों में बदल गए हैं। नंबर दो, आत्मनिर्भरता में कमी आई है और आज तो अधिकांश समुदाय औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण आदि कारणों से अन्य समुदायों पर निर्भर हैं। नंबर तीन, सामुदायिक भावना में परिवर्तन हुआ है। जहां कुछ समय पूर्व तक प्रत्येक समुदाय के सदस्य दृढ़ सामुदायिक भावना में बंधे हुए थे, वहां अब यह भावना इसी समुदाय तक सीमित नहीं रही है। वर्तमान में व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कारणों से अन्य समुदायों के साथ भी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। नंबर फोर, समुदाय के भीतर समुदाय आज के आधुनिक जटिल समाज की एक प्रमुख विशेषता है। वर्तमान में समुदायों के आकार में इतनी वृद्धि हुई है कि प्रत्येक बड़े समुदाय में अनेक छोटे समुदाय पाए जाते हैं। किसी भी महानगर के उपनगर, बड़े खंड या मोहल्ले अपने आप में पृथक समुदाय के रूप में हैं। नंबर फाइव, वर्तमान में बड़े समुदायों को सामान्य जीवन का क्षेत्र, एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग, कहना कठिन है, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों में अलग अलग प्रकारों का जीवन देखने को मिलता है। अब तो यह कहा जा सकता है कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में समुदाय के आधारों या विशेषताओं में नंबर एक व्यक्तियों का समूह, नंबर दो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, नंबर तीन सामुदायिक भावना कम या अधिक मात्रा में प्रमुख है। अब तो इच्छाएं, आकांक्षाएं, हित एवं उद्देश्य समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। सीमावर्ती समुदायों के कुछ उदाहरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम जनजातीय समूह जो एक क्षेत्र विशेष में बसा हो, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि समुदाय के उदाहरण हैं। इनमें समुदाय के प्रमुख आधार और अनेक विशेषताएँ मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त कुछ समूह अथवा संगठन ऐसे हैं जिनके संबंध में यह भ्रम पाया जाता है कि वे समुदाय हैं अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं और कुछ नहीं। ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ भ्रम है, परंतु जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं अवश्य मौजूद हैं, सीमावर्ती समुदायों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ऐसे समुदाय के कुछ उदाहरणों पर हम विचार करेंगे। नंबर एक, क्या जाति एक समुदाय है? इज कास्ट ए कम्युनिटी? जाति में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसमें अपने सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में हम की भावना या सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है। जाति किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर नहीं, बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम भी होते हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं, परंतु समुदाय के एक प्रमुख आधार निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जाति में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। एक ही जाति के लोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इसके अलावा एक जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है और ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित न होकर उपजातियों में बट जाती है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से जाति को समुदाय नहीं माना जा सकता। दूसरा, क्या जेल, बंदी गृह एक समुदाय है? इज प्रिजन ए कम्युनिटी? जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर एवं पेज ने जेल को समुदाय माना है। आपने जेल को इस कारण भी समुदाय माना है कि इसका अपना एक कार्य क्षेत्र है, परंतु हम मैकाइवर और पेज के जेल को एक समुदाय मानने के मत से पूर्णतः असहमत है। जेल में अब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। इसे समुदाय कैसे माना जा सकता है? न मानने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, जेल के कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या अपनत्व की भावना का अभाव पाया जाता है। दूसरा, जेल में सबका जीवन समान या एक सा नहीं होता। अपराध की प्रकृति और अपराधी की प्रतिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशेष श्रेणी के कैदी के रूप में रखा जाता है और उसी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तीसरा, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथा, जेल का स्वतः विकास नहीं होता है। पांचवा, जेल में समुदाय के समान अस्थायित्व का भी अभाव पाया जाता है। सरकार इसे समाप्त भी कर सकती है, स्थान परिवर्तन भी कर सकती है। यहाँ हम यही कह सकते हैं कि जेल एक समुदाय न होकर समुदाय का एक अंग है, एक समिति है जिसे विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। नंबर तीन, क्या पड़ोस समुदाय है? आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती थी। कुछ गांवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण हैं, परंतु अब ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह था जिसमें सामुदायिक भावना थी, परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों में पड़ोस की निम्न कारणों से समुदाय नहीं माना जा सकता। पहला, पड़ोस सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों के पड़ोसियों में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। तीसरा, आज कल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता। अब तो जानबूझकर नई कॉलोनियों जैसे बैंक, कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती आदि बनाई जाती है जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने पड़ोस को चुनता है। चौथा, यहाँ नियमों की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। इन सब कारणों की वजह से विशेषतः नगरीय समुदायों और कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रामीण समुदायों में भी पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता। किसी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, आर्थिक धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार आदि को समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें समुदाय के आवश्यक आधारों एवं विशेषताओं का अभाव पाया जाता है।